ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्र ने 10,000 रेल इंजनों पर कवच प्रणाली लगाने के चौथे संस्करण को स्वीकृति दी। रेल मंत्री ने कहा, मंत्रालय ने कवच लगाने की प्रक्रिया अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 28वां दिल्ली पुस्तक मेला शुरू हुआ। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 नई आवासीय योजनाओं को मंजूरी दी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। 10वें अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र प्रगति कर रहा है, ये प्रगति अजेय है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। केंद्र ने 10,000 रेल इंजनों पर कवच प्रणाली लगाने के चौथे संस्करण को स्वीकृति दे दी है। कवच स्वचालित रूप से रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर ब्रेक लगा सकेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि मंत्रालय ने कवच लगाने की प्रक्रिया अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि कवच प्रणाली के चौथे संस्करण को रेलवे के मानक निर्धारण संगठन अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन ने अनुमोदित किया है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे अब पूरे देश में मिशन मोड में कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। रेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में कवच को 1,465 किलोमीटर रेल मार्गों और दक्षिण मध्य रेलवे पर 144 रेल इंजनों पर स्थापित किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में कवच की स्थापना दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्गों पर हो रही है। उन्होंने कहा कि अगले संस्करण में ये मुंबई चेन्नई और चेन्नई कोलकाता मार्ग को शामिल करेगा। रेल मंत्री ने बताया कि कवच प्रणाली को सभी नई परियोजनाओं में स्थापित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,48,00,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह योजना देश भर में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चौथे चरण के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, परिधान, कृषि और लॉजिस्टिक युवाओं के सबसे पसंदीदा क्षेत्र हैं। सरकार ने बताया कि भंडारण और परिवहन के दौरान खाद्य पदार्थों की होने वाली बर्बादी में पिछले 10 वर्षों में काफी कमी आई है। लोकसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि चावल की बर्बादी 2013 की 0.39% से घटकर अब 0.07% हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवहन के दौरान गेहूं की बर्बादी 0.35% से घटकर 0.14% और चावल की बर्बादी 0.58% से घटकर 0.19% हो गई है। श्री जोशी ने कहा कि केंद्रीय पूल के खाद्यान्न भंडार के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों की भंडारण क्षमता 604,00,000 मीट्रिक टन के भंडारित स्टॉक के मुकाबले 837,00,000 मीट्रिक टन से अधिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203 गीगावाट तक पहुंच गई है। लोकसभा में श्री जोशी ने कहा कि 115 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।
2014 से मोदी जी के नेतृत्व के बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में 165% वृद्धि हुआ है। सोलर में हम 10 साल में 2014 में ओनली 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी था, आज के दिन में 85.47 सोलर एनर्जी कैपेसिटी है।
सरकार ने कहा है कि देश में 1,700 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर कुल 1,936 एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट काम कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि कुल 67,979 प्रत्यक्ष लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। रेल मंत्री ने बताया कि मार्च 2022 से जुलाई 2024 की अवधि में इन आउटलेट्स की कुल बिक्री 79 करोड़ रुपए से अधिक रही। सरकार ने आज कहा है कि मौजूदा चीनी सीजन 2023-24 में गन्ना किसानों का लगभग 95.3% बकाया पिछले महीने तक चुकाया जा चुका है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती नीमूबेन जयंती भाई बामभानिया ने लोकसभा में आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीनी सीजन अक्टूबर सितंबर 2021-22 का लगभग 99.9% बकाया भी चुका दिया गया है। इस तरह 2022 से 2023 के चीनी सीजन का 99.6% से अधिक के बकाये का भी भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का भुगतान नियमित आधार पर किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि भारत 2 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि देश अभी विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। नई दिल्ली में आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र प्रगति कर रहा है, ये प्रगति अजेय है। आर्थिक राष्ट्रवाद को लेकर श्री धनखड़ ने कहा कि ये देश की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आर्थिक राष्ट्रवाद विदेशी मुद्रा को बचाने और रोजगार सृजित करने तथा देश में उद्यमशीलता के अवसर पैदा करने में सहायक होगा।
हथकरघा दिवस सुना गया, क्यों? इसकी भारी आवश्यकता है। आज के दिन आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा और दिया था, बी वोकल फॉर लोकल। उसका अहम अंग है हथकरघा, इसके उत्पाद कि जो हथकरघा से उत्पाद हो सकता है उसका आयात हम करते हैं विदेशों से। कितना फॉरेन एक्सचेंज इसमें जाता है। आई देयर फॉर स्ट्रांगली एडवोकेट इकोनॉमिक नेशनलिज्म।
इस अवसर पर श्री धनखड़ ने हथकरघा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हथकरघा बुनकरों को संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। राजधानी के भारत मंडपम में आज से 28वां दिल्ली पुस्तक मेला शुरू हुआ। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ के कार्यकारी निदेशक रजत अग्रवाल ने इस मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि इस मेले के माध्यम से आईटीपीओ का लक्ष्य पुस्तकों की प्रदर्शनी के साथ साथ व्यावसायिकता में उत्कृष्टता हासिल करना है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक मेले का विषय भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव है। एक रिपोर्ट।
में इस वर्ष 90 से अधिक प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। इस बार मेले का मुख्य आकर्षण स्टेशनरी और कॉरपोरेट गिफ्ट मेला है। मेले में पुस्तकों, पत्रिकाओं, शिक्षण सामग्री के साथ साथ उपहारों की भी एक विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। मेले के पहले दिन आज कई राज्यों से पुस्तक प्रेमी, लेखक और प्रकाशक पहुंचे। मेले में आगंतुकों के लिए विशेष तौर पर एक फूड कोर्ट भी बनाया गया है, जहां लोग पुस्तकों के साथ साथ देश विदेश के व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल।
दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 नई आवासीय योजनाओं को मंजूरी दे दी है। एक रिपोर्ट।
DDA राजधानी में घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए 3 नई आवासीय योजनाएं लाने जा रहा है। वर्ष 2024 के लिए प्राधिकरण सस्ता घर आवासीय योजना, DDA सामान्य आवासीय योजना और DDA द्वारका हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 39,573 फ्लैट उपलब्ध कराएगा। इस योजना में फ्लैटों की शुरुआती कीमत 11,50,000 रुपए रखी गई है। इन योजनाओं में फ्लैट खरीदने के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। लोगों को सभी जगहों पर जहां फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहां सैंपल फ्लैटों को देखने का अवसर भी मिलेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलेन अख्तर, आकाशवाणी दिल्ली।
आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने की। बैठक में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान सुरक्षा से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यातायात प्रतिबंध और सीमाओं पर अनाधिकृत घुसपैठ को रोकने के लिए कदम उठाने की योजना भी बनाई गई। पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती की फाइनल स्पर्धा के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने पर विश्व कुश्ती संघ में विरोध दर्ज कराया है। श्री मांडविया ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार विनेश को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है।
इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओलंपिक खेलों में अब तक किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ओलंपिक खेलों में फोगाट के बेहतरीन प्रदर्शन ने देश और देशवासियों को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विनेश फोगाट को सांत्वना देते हुए कहा कि ये दुखद है और उनके पास अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने पिछले 5 वर्षों में 149 निजी विश्वविद्यालयों को अनुमति दी है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने बताया कि स्वायत्त दर्जा देने के लिए यूजीसी को देश भर के विभिन्न कॉलेजों से 806 प्रस्ताव और आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से 613 प्रस्तावों को यूजीसी ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली कौशल संवर्धन एवं उद्यमिता विकास स्कूल ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का विषय इम्पावरिंग एजुकेटर फॉर एंटरप्रेन्योरल एक्सीलेंस अ स्टेप टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 था, जिसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें नए पाठ्यक्रमों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए नवीन शिक्षण पद्धतियों की व्यापक समझ प्रदान करना था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हाल ही में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों के पानी में डूबने से हुई मौत की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। इससे पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति भी गठित की थी। ये समिति घटना के कारणों की जांच कर जरूरी उपाय सुझाने के साथ नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल के साथ मारपीट मामले में दायर आरोप पत्र स्पष्ट करता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों की संभावित संलिप्तता है। श्री सचदेवा ने कहा कि सुश्री स्वाति मालेवाल का केजरीवाल परिवार से लंबा संबंध रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री केजरीवाल आरोपी विभव कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सके। राजधानी में आज ज्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने के साथ ही कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने 10,000 रेल इंजनों पर कवच प्रणाली लगाने के चौथे संस्करण को स्वीकृति दी। रेल मंत्री ने कहा, मंत्रालय ने कवच लगाने की प्रक्रिया अगले 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 28वां दिल्ली पुस्तक मेला शुरू हुआ। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 3 नई आवासीय योजनाओं को मंजूरी दी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा और यातायात को लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आज अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।